ओम शांति। आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी जी का हम करतल ध्वनि के साथ स्वागत करते हैं। आपकी क्लास का विषय ही है निर्विघ्न और विघ्नजीत बनने की विधि। आज आप सभी को सुनाएंगे आपका परिचय। आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी राजस्थान यूनिवर्सिटी से अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी की। प्रारंभ में आपने उदयपुर कोटा डूंगरपुर में कार्य किया। वर्ष 1991 में आप ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर माउंट आबू में चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त हुई और वर्ष 2000 तक अपनी सेवाएं दी। फिर वर्ष 2000 से वर्ष 2007 तक दादी प्रकाश मणि जी पूर्व मुख्य प्रशासिका ब्रह्मा कुमारीज की व्यक्तिगत चिकित्सक एवं सहायक रही। आपको बचपन से ही आध्यात्म में गहरी रुचि रही। वर्ष 1974 के दौरान आप ब्रह्मा कुमारीज के संपर्क में आई। आपने वर्ष 1989 में समर्पित रूप से मानव जाति की सेवा के लिए आध्यात्म को अपनाया। आप में स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता के बारे में लोगों में जागरूकता लाने में बहुत रुचि है। वर्तमान में आप महिला प्रभाग की मुख्यालय संयोजिका है। आपने भारत के विभिन्न हिस्सों में और विदेशों में यूके यूएसए जापान चीन हांगकांग यूएई वेनेजुएला मलेशिया कैरेबियन फ्रांस जर्मनी पोलैंड स्विट्जरलैंड थाईलैंड वियतनाम म्यांमार रूस देशों में स्वस्थ जीवन शैली और मेडिटेशन के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए भ्रमण किए। आप महिला प्रभाग के राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों का संयोजन एवं आयोजन करती हैं। वर्ष 2001 को जब भारत सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के वर्ष के रूप में घोषित किया गया तब आपने अखिल भारतीय महिला आध्यात्मिक सशक्तिकरण अभियान में भाग लिया जो कि ब्रह्मा कुमारी द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए आयोजित किया गया था। वर्ष 2014 में आपने राष्ट्रीय स्तर के अभियान नारी सुरक्षा हमारी सुरक्षा को कोऑर्डिनेट किया जो कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले विभिन्न प्रकार की हिंसा के विरुद्ध जागरूकता लाने के लिए उनके जीवन को अधिक सुरक्षित एवं आत्मसम्मान संपन्न बनाने के लिए आयोजित किया गया था। वर्ष 2016-17 में आपने राष्ट्रीय अभियान बेटी बचाओ सशक्त बनाओ कोऑर्डिनेट किया जो कि बालिकाओं को बचाने उन्हें शिक्षित करने एवं सशक्त बनाने के उद्देश्य से एवं आम जनता के बीच लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। इनके साथ आप एक वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका भी हैं और तनाव प्रबंधन स्वस्थ और प्रसन्न रहने की कला मेडिटेशन इज मेडिसिन क्रोध प्रबंधन सकारात्मक चिंतन करने की कला संबंधों में समरसता राजयोग मेडिटेशन स्वसशक्तिकरण एवं महिला सशक्तिकरण आदि विषयों पर आप वक्तव्य देती हैं। आपने बिरला सीमेंट श्री सीमेंट ONGC इफ्को LNT मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में विभिन्न संगठनों में व्याख्यान दिए और कार्यशालाएं आयोजित की। रोटरी और लायंस क्लब आर्मी एयरफोर्स नेवी विभिन्न कॉलेजों जेलों आदि में आपने ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा आयोजित कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया है। तनाव क्रोध चिंता प्रबंधन में सकारात्मक वक्तव्य देती हो। स्वस्थ और खुश रहने की कला से जीवन खुशियों से भर देती हो। सशक्त नारी जाति बने शुभ अभिलाषा रखती हो। निर्विघ्न रहे संपूर्ण बने ऐसी शुभकामनाएं करती हो। आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी जी।
ओम शांति ओम शांति ओम शांति। हम जब बाबा के बनते हैं तो बाबा का बनना माना ही माया को चैलेंज करना, क्योंकि बाबा का बनने के पहले तो हम माया के ही साथी होते हैं। लेकिन जब बाबा के बनते हैं तो फिर हम बाबा के साथी हो जाते हैं, लेकिन आधा कल्प से हम माया के ग्राहक रहे तो फिर इतना जल्दी तो माया हमको छोड़ती नहीं है। तो जो विघ्न आते हैं हमें, वो माया के कारण विघ्न आते हैं। हम हिस्ट्री में सुनते हैं, जब ओम मंडली शुरू हुई तो बाबा ने जो धारणाएं दी उसमें पवित्रता की धारणा, जो एक ब्राह्मण जीवन की विशेष धारणा है या फाउंडेशन है, तो उस समय जो भी विघ्न आए वो ज्यादातर इसके कारण आए। बाबा को कोर्ट तक भी जाना पड़ा तो यही कारण बना कि बाबा को कोर्ट में जाना पड़ा। और ऐसे ही खान पान की शुद्धि की धारणा, सात्विक भोजन, शुद्ध शाकाहारी भोजन, ये भोजन की धारणा के कारण भी समाज में हमें कई बातों को सुनना पड़ता है। तो जो ओम मंडली के समय की स्थिति थी, उनका तो बाबा के प्रति इतनी लगन, इतना प्यार और इतना अटूट निश्चय कि चाहे उनको घर बार छोड़ना पड़ा, हम देखते हैं हमारी सब दादियां सब अच्छे घरों से थे, लेकिन सब बाबा के पास आ गए सब कुछ छोड़कर, कि नहीं, जो बाबा ने कहा है वही करना है, फिर चाहे समाज कितना भी हमारा विरोधी बन जाए। तो बाबा कई बार कहते हैं वो तो भट्टी बननी थी, है ना, फिर बेगरी पार्ट भी चला जब सेवा के फील्ड में आए, तब यज्ञ में धन का बहुत अभाव था, सेवाओं की शुरुआत थी, ऐसा भी समय था जब खाने को नहीं होता था, लेकिन ब्रह्मा बाबा हमेशा निश्चिंत रहे क्योंकि उन्होंने बाबा पर जो निश्चय था कि बाबा जिम्मेवार है, ये बाबा का यज्ञ है, मैं भी बाबा का हूँ और बच्चे भी बाबा के हैं, बाबा खिलाने वाला है, मैं तो निमित्त हूँ। तो कभी भी उन्होंने उस बात की भी चिंता नहीं की। और हम सब सुनते हैं कि समय पर सामान भी आ गया और समय पर सबको खाना भी मिल गया। तो हर विघ्न पर एक लगन और अटूट निश्चय के आधार पर विजयी बने बाबा और जो हमारी दादियां थी। हमारे अपने जीवन का भी अनुभव है, जब हम, क्योंकि ये आज भी वही कहानी होती है, क्योंकि पवित्रता की धारणा जो है वो कलयुग के विपरीत दिशा में जाना है। तो जब हम भी ज्ञान में आए और हमने ये निर्णय लिया कि हमें ब्रह्मा कुमारी जीवन जीना है, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन में आप अगर हैं, पढ़ाई किया है, तो परिवार की अपेक्षाएं होती हैं, लेकिन हमने कहा कि हमें ब्रह्मा कुमारी बनना है, तो निश्चित है कि उनका वो विघ्न था कि नहीं, उनकी तरफ से मना होना मना हमारे लिए वो विघ्न हो गया कि नहीं नहीं जाना है, यहीं रहना है और शादी भी करना है। तो फिर हमने थोड़ा मन में उसका प्लानिंग किया कि कैसे इस बंधन से मुक्त होना है। जैसे बाबा कहते हैं ना, कई बांधेले होते हैं, बांधेलियां होती हैं, तो जो बंधन है हमारे, वो कैसे उन बंधनों से हम मुक्त हो सकते हैं। तो मैं उस समय बाबा मिलन के लिए आई, जब ये पीरियड चल रहा था, तब बाबा पर्सनल मिलते थे। अब तो बाबा का हम वीडियो से मिलन मनाते हैं, लेकिन उस समय ऐसा था कि एक एक बाबा के सामने जाते थे, बाबा उनको दृष्टि देते थे, टोली देते थे और वरदान भी बोलते थे बाबा को, जो प्रेरणा होती थी उस आत्मा के प्रति। तो हम मिले बाबा से और बाबा से वो पावरफुल दृष्टि ली, अपने अंदर पावर भरी और जो हमारी टीचर थी उन्होंने कहा कि बाबा इनको बहुत बंधन है। तो बाबा ने कहा कि जहां लगन है वहां विघ्न ठहर नहीं सकता, और अगर हिम्मत है तो बाप की मदद है ही है। तो बाबा ने उसको मिटाने का साधन क्या बताया, बाबा से जितनी हमारी लगन तीव्र होगी वो कोई भी विघ्न उसके आगे ठहर नहीं सकेगा। और हमने देखा उसके आने के बाद कुछ ही महीनों के अंदर हमारे माता पिता समझ गए कि इनकी इतनी लगन है इस तरफ, तो इनको कोई भी बात में जबरदस्ती करना बेकार है। यानी हम जो कहते हैं वो ये नहीं करने वाली हैं, इनको वही करना है इनको जो वहां से श्रीमत मिलती है। तो फिर हमारा बंधन जो है वो सहज ही कट गया और हम बाबा की सेवा में समर्पित हुए। तो हिम्मत की बात, एक तो अगर हमारी हिम्मत है, कोई भी विघ्न है हमारे जीवन में, बंधन है, अगर हम हिम्मत रखते हैं और लगन माना बाबा की याद है उतनी हमारी, तो वो सहज ही हम उससे मुक्त हो जाते हैं क्योंकि बाबा की मदद हमें मिलती है। हमने देखा है बहुत सारी माताएं हमसे बात करती हैं, भाइयों को भी आता है लेकिन भाई कोई कोई होते हैं लेकिन माताएं ज्यादा होती हैं, बहनें ज्यादा होती हैं, तो कई बार वो हमें यही कहते हैं कि पति ज्ञान में नहीं चलते, परिवार ज्ञान में नहीं चलता, तो पवित्रता की धारणा में चलना बहुत मुश्किल होता है। फिर उन्होंने अपनी युक्ति लगाई क्योंकि चाहे जो भी कारण हो, पवित्र रहेंगे तभी विश्व के मालिक बनेंगे, तभी ऊंच पद मिलेगा। बाबा ने तो हमें श्रीमत दे दी, फिर हमें कैसे करना है वो हमें देखना है कि हम अपने उस विघ्न को कैसे दूर कर पाते हैं। तो कईयों ने इतना बाबा से योग लगाया, जो हम भोजन भी बनाते हैं उस भोजन में भी हम वो वाइब्रेशन भरते हैं प्यूरिटी के। तो धीरे धीरे उनके पति की बुद्धि बदल गई और वो अपने पति को भी ज्ञान में ले आए, तो वो ही बाबा के बच्चे बन गए, तो धारणा अपने आप हो गई। फिर कुछ ने क्या किया कि अपने पति को अपने योग बल से सहयोगी बना लिया, चलो वो ज्ञान में नहीं आए लेकिन सहयोगी बन गए, उनका विरोध नहीं करते, ठीक है इनको जो करना है, जो इनकी धारणा है इसमें इनको चलना है तो हमें इनको मदद करनी है। बाकी जो घर परिवार की जो भी जिम्मेवारी है वो तो हमें पूरी तरह से निभानी है ना। बाबा के ज्ञान योग करने का ये मतलब नहीं कि हम अपनी घर परिवार की जिम्मेवारी की लापरवाही करें। फिर कुछ ने जब कोई भी तरह से ये बंधन नहीं हट रहे थे, तो बाबा कहते ना जो नष्टो मोहा है वो फिर ऐसा कदम उठा सकते हैं, तो वो फिर भले ही उनको छोड़ना ही पड़ा, अपना वो घर छोड़ देना पड़ा, पति को छोड़ना पड़ा, बच्चों को छोड़ना पड़ा, बहुत कम होता है, लेकिन कुछ ने फिर ऐसा भी कदम उठाया। लेकिन अपनी पवित्रता की धारणा को कमजोर नहीं होने दिया। तो सबसे ज्यादा विघ्न जो आते हैं वो बाबा की इस धारणा को लेकर के ही इस कलयुगी दुनिया में आते हैं। फिर उसके बाद जो खान पान की शुद्धि का है वो तो हमारे अपना ही विघ्न होता है, कोई दूसरा हमें मजबूर नहीं कर सकता, है ना। हम समाज की लोक लाज को अगर निभाने का सोचते हैं कि हम गए किसी के घर में, हाँ, या किसी के घर में कोई पार्टी है और हमने नहीं खाया तो ये नाराज हो जाएंगे हमसे, हाँ फिर हमारे भी तो घर में कुछ ना कुछ होगा, हम इनको बुलाएंगे तो ये भी फिर नहीं खाएंगे, हाँ, या हम ही कंट्रोल नहीं कर पाते जब हम 10 चीजें बनी हुई देखते हैं, होता है ना, इतनी डिशेस हमारे सामने हो और हम गए और हम अपने आप को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे, चलो एक दिन खा लेते हैं क्या फर्क पड़ता है, हाँ बाकी तो धारणा तो करते ही है ना, बच्चे भी जा रहे हैं सब साथ में पूरा परिवार है। तो कुछ लोग खाने पीने की धारणा में खुद की कमजोरी के कारण हाँ, ये हमको कहेंगे स्वयं का ही विघ्न है। तो बाबा ने जो हमें नियम दिया है, फिर चाहे जो हो जाए, किसके श्रीमत का पालन करना है, समाज की लोक लाज का पालन करना है या बाबा ने जो श्रीमत दी उसका पालन करना है, वो तो निभाते ही आए ना, इतने जन्मों से तो वही निभा रहे हैं, 63 जन्मों से तो निभाते ही आए हैं, लेकिन ये एक जन्म मिला है हमें अपनी ये अविनाशी कमाई करने का। तो किसी भी कीमत पर, चाहे हम जहां भी, ऐसे नहीं बाबा कहता हमें शादी में नहीं जाना, हमें किसी की पार्टी में नहीं जाना, या हमें आपस में जो हमारे संबंध हैं उन संबंधों में नहीं जाना, जाना है, लेकिन अगर हमने उनको बता दिया कि हमने एक नियम ले लिया है, अब हम नहीं खाते हैं, अच्छा हम जो खा सकते हैं वो आप हमें खिला सकते हैं, कि हम ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, हम फल खा सकते हैं, हम सलाद खा सकते हैं, या कोई भी जो ड्रिंक है इस तरह का, जो रेडीमेड ड्रिंक आते हैं, हाँ वो हम ले सकते हैं, तो जो हम ले सकते हैं वो हम उनको कहें, तो उस तरह से हम उनके बीच में जो हमारा है व्यवहार वो भी बना रहेगा और हमारी धारणा भी बनी रहेगी। और आजकल सब समझते हैं, अगर हम किसी को कहेंगे प्यार से तो वो समझते हैं, चलो वो एक बार कह देंगे अरे नहीं हमने बहुत शुद्धि से बनाया है, हमारे घर में भी हम इन सब चीजों का पालन करते हैं, वो क्या समझते हैं साफ सफाई से बना होना चाहिए, उसको ही पवित्रता समझते हैं, तो ये भी कहने की कोशिश करते हैं अरे हमने बहुत शुद्धि से बनाया है, हमको पता है, तो आप खा सकते हो ना, लेकिन हम तो कोई भी जो बाबा के बच्चे नहीं है, जो ज्ञान में नहीं चलते हैं, जिनको धारणाएं नहीं है, उनके हाथ का बना हुआ हम नहीं खा सकते ना? तो ये हमें देखना है कि चाहे हमें जितना समय हुआ बाबा के ज्ञान में, कोई तो होते हैं कि एक सप्ताह का कोर्स किया और उसमें ही ये पूरी धारणा हो गई, लहसुन प्याज भी छूट जाता है, कोई व्यसन होता है तो वो व्यसन भी छूट जाता है, और सब खान पान की बिल्कुल सात्विकता अपना लेते हैं।
शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है, अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो, विकराल विनाश खड़ा आगे, अब हम सब का शिव पिता ने बतलाया है। शिव पिता को अब याद करो, शिव शक्ति तैनाती रणभेरी अब फिर बजती है,
शिव बाबा के ज्ञान से फिर माया को भगाना है।
शिव पिता को अब याद करो, सतयुग में तुमको करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना। अपने कर्मों के बल पर ही सतयुग में अब तुम्हें आना है। सतयुग में अब तुम्हें आना है।
और ऐसे ही स्वयं के जो संस्कार हैं, शुरू में जब हम ज्ञान में चलते हैं तो बहुत नशा होता है, खुशी होती है, और क्योंकि बाबा के हम बहुत छोटे बच्चे हैं उस समय, तो बाबा खुद हमारी संभाल करते हैं, तो हमें कोई विघ्न विघ्न लगता ही नहीं है। वो जैसे कहा कि वो नशे में वो कैसे पार हो गया हमें पता ही नहीं चलता, लेकिन जब कुछ समय हो जाता है, जैसे माँ बाप भी छोटे बच्चे की हर बात का ध्यान रखते हैं, लेकिन जब बच्चा खुद चलने लगता है तो फिर उसको थोड़ा फ्री छोड़ते हैं। तो ऐसे ही बाबा जब हमें फ्री छोड़ते हैं और जब हम स्वयं के पुरुषार्थ पर आ जाते हैं, तब फिर हमारे अपने ही संस्कारों के विघ्न हमारे लिए पुरुषार्थ की जो तीव्रता है उसको कम करने लगते हैं। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये जो भी हमारे संस्कार हैं, तो यही माया का रूप बन करके हमारे पुरुषार्थ को कम कर देते हैं। लेकिन बाबा ने हमें माया जीत बनने के लिए ज्ञान के अस्त्र शस्त्र दिए हैं। जो भी मुरली हम सुनते हैं, जो भी उसके लिए हमें पॉइंट्स मिलते हैं, हर दिन बाबा हमें वो शक्ति भरते हैं कि माया की इस विकारों की दुनिया में रहते हुए भी हम कैसे इन विकारों को जीत लें। तो अगर हम समय पर वो पॉइंट यूज कर लेते हैं तो हम वो माया जीत बन जाते हैं। मानो काम विकार की बात है तो दैहिक आकर्षण के कारण काम विकार पैदा होता है, और बाबा ने क्या बताया, देह को देखना ही नहीं है, किसको देखना है, रोज ये लेसन पक्का कराता है बाबा, किसको देखना है, नजर कहाँ जानी चाहिए, मस्तक पर ही जानी चाहिए जहाँ आत्मा रहती है। तो जब हमें वो याद आ जाएगा, वो स्मृति स्वरूप होंगे हम, इसीलिए बाबा कहता है ना, जैसे हमने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया तो सही निशाना लगेगा, रोज जो उसको यूज करता है समय आने पर निशाना लग जाएगा, लेकिन अब यूज नहीं करते और फिर अचानक हम निशाना लगाने की कोशिश करते हैं तो निशाना चुक जाएगा। तो क्यों विचार सागर मंथन करने के लिए बाबा कहता है, इसीलिए कहता है कि वो ज्ञान हमारा अपना बन जाए। तो मुरली केवल एक बार सुनने की बात नहीं, वो तो ऐसे ही होता है, जैसे बाबा कहते हैं ज्ञान बह जाता है, वो लीकेज है, ऐसा होता है एक कान से सुना दूसरे कान से बाहर आ गया तो वो तो टिकता नहीं है, एक बार जो सुना वो इतना नहीं टिकता है, लेकिन जब हम उसे रिवाइज करते हैं, उसे फिर से हम अपने मन में उसको याद करते हैं कि बाबा ने क्या किया, फिर उसको समय पर यूज करते हैं, तब फिर वो जो भी माया के विघ्न रूप आते हैं उस समय वो पॉइंट हमारी काम करती है, और उस शक्ति से, ज्ञान भी शक्ति है, ज्ञान का भी बल है, और वो हम विजयी बन जाते हैं। ऐसे ही चाहे क्रोध का संस्कार है, वो कितना विघ्न रूप बनता है हमारे जीवन में क्रोध का संस्कार। हाँ, आपने गुस्से में किसी को ऐसा कह दिया, सामने वाला चलो चुप रह जाएगा, है ना, हो सकता है आप बड़े हैं या आप कोई पोस्ट पोजीशन पर हैं, वो आपके सामने कुछ बोल नहीं सकता, चुप रह जाएगा, लेकिन क्या होगा, मन ही मन कहीं ना कहीं उसमें बदले की भावना रहती है और वो अवसर ढूंढते रहते हैं, और जैसे ही उनको मौका मिलेगा वो आपके लिए समस्या जरूर पैदा करेंगे, आपके लिए वो विघ्न रूप जरूर बनेंगे, या आपके बारे में कोई उल्टी पुल्टी बातें जरूर वो बोलेंगे, आपके लिए वातावरण बनाएंगे। तो हमने अपने ही संस्कार से अपने लिए विघ्न पैदा कर लिया तो क्रोध विजय उस पर विजय पानी है तो चाहिए उसके लिए सहन शक्ति, समाने की शक्ति, शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, रहम की शक्ति। क्यों इतनी शक्तियां बाबा ने हमें दी? ताकि हम अपने इन जो हमारे ही संस्कारों के विघ्न हैं उन पर हम विजय पाएं। तो समय पर उस शक्ति को हम प्रयोग करें। बाबा कहते हैं कि हमें रहम दिल बनना है, हम बाबा के समान मास्टर प्रेम के सागर हैं, हम ही मास्टर शांति दाता हैं। तो ये अगर स्मृति है हमें तो हम कभी भी गुस्से में आकर किसी को दुख देने वाले वचन या किसी का अपमान करने वाले वचन हम नहीं कहेंगे। तो समय पर ज्ञान को यूज करना, जो बाबा ने हमें बनाया है, जो बाबा ने हमें वो स्वरूप दिया है। ऐसे ही लोभ के संस्कार आ जाते हैं, होता है बिजनेस में, बिजनेस करते हैं, धन कमाते हैं हम, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लोभ का अंश तो रहता है, कहीं उसमें घाटा हो गया, धन में ऊपर नीचे हो गया, कोई भी ऐसी वैसी बात हो गई, ये सब हमारे लिए विघ्न रूप बनते हैं। तो जहां भी ऐसी स्थिति है तो कई बार संशय में आ जाते हैं। हमने देखा है कईयों को कि अगर उनके बाबा के ज्ञान में आने के बाद अगर ऐसा हो गया, ज्ञान के पहले कुछ ऊपर नीचे होता है तो ठीक है, होता भी है और नहीं भी होता है, दोनों ही बातें हैं, लेकिन ज्ञान में आने के बाद नहीं होगा ऐसी तो कोई गारंटी नहीं है। कई फिर जो रिश्तेदार होते हैं वो फिर पॉइंट आउट भी करते हैं, क्योंकि हम हमारे सामने ऐसे दो केसेस हुए कि वो बाबा के ज्ञान में आए और जहाँ नौकरी करते थे वो नौकरी में कुछ मिस्टेक हो गई उनसे, तो मिस्टेक होने के कारण उनको सस्पेंड कर दिया, नौकरी से थोड़े समय के लिए बिठा देते हैं, जब तक कोई फैसला हो तब तक, माना कुछ धन की ही इधर उधर करने की बात थी, जैसे रिश्वत ले लेते हैं, पकड़े जाते हैं, सुनते हैं ना हम समाचारों में कि भाई लालच में आकर के उससे थोड़ा ज्यादा पैसा ले लिया और फिर पकड़े गए, तो जब तक कि ये प्रूव ना हो कि आपने ये गलती की है नहीं की, नौकरी से उनको सस्पेंड कर देते हैं। तो फिर उनके रिश्तेदारों ने कहना शुरू किया, परिवार ने कहना शुरू किया, तुम ब्रह्मा कुमारी में गए ना, तुमने भक्ति करना छोड़ दिया, तुमने अपने गुरु को छोड़ दिया, इसीलिए तुम्हारे ऊपर ये विपत्ति आई है, ये विघ्न क्यों आया, ऐसा भी सुनने को मिलता है। फिर संशय में आ जाते हैं, अगर बाबा से निश्चय हटा, पेपर तो होंगे ना हमारे, हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, भगवान हमें इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तो कोई ना कोई पेपर तो हमारे जीवन में आएगा जो सिद्ध करेगा कि हाँ कि ईश्वर के ज्ञान में इतनी ताकत है कि कोई भी परिस्थिति आ जाए तो हम उसको सहज पार कर सकते हैं, माना हमारी अवस्था अचल अटल अडोल रहे। अगर बाबा पर उतना अटूट निश्चय है जैसे ब्रह्मा बाबा रहे, हमने देखा बाबा के सामने कैसी कैसी स्थितियां आई, शायद ऐसी स्थितियां तो हमारे सामने नहीं आती, ऐसे विघ्न तो नहीं आते। तो बस संशय में आ गए दूसरों के कहने से और संशय में आए तो क्या हुआ, ज्ञान ही छोड़ दिया, जिसको बाबा कई बार कहते हैं फिर आश्चर्यवत सुनंती कथंती, और क्योंकि सुन लिया ना दूसरों का, हाँ ये ऐसा कह रहे हैं इसका मतलब बात तो सही है, ज्ञान में आने के पहले तो सब कुछ ठीक था, ज्ञान में आने के बाद क्या हो गया, तो सुन लिया फिर वो फिर कहाँ चले गए। तो हमको इतना जो भाग्य विधाता ने भाग्य दिया उस भाग्य से हम वंचित हो गए। जो दूसरा केस हुआ, ये एक केस मैंने बताया, जो दूसरा केस हुआ वो उन्होंने भी थोड़ा समय ज्ञान छोड़ दिया है ना, नौकरी से उनको सस्पेंड कर दिया, फिर थोड़ा वो भी संशय में आ गए, ज्ञान छोड़ दिया, लेकिन बाबा कहता है ना क्योंकि ज्ञान का बीज पड़ा हुआ है, वो अनुभव है, तो फिर कुछ सालों के बाद फिर से ज्ञान में आ गए, फिर पूरी रीति से पूरी लगन से फिर पुरुषार्थ करने लगे। तो हम भले ही आगे तो बढ़ सकते हैं लेकिन अंतर तो आ गया ना, जिसको बाबा कहते हैं रजिस्टर में दाग तो पड़ गया ना। तो रजिस्टर जो है, जो हमारी भाग्य की लकीर है, वो भाग्य की लकीर टूट गई बीच में, ऐसा कहेंगे। तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं, लेकिन बाबा ने जो हमें कहा है कि वर्तमान समय जो भी होता है हमारे साथ, उसमें हमारा कल्याण है। संगम युग कल्याणकारी है। देखने में बुरा लगता है, कई बातें तो जीवन में घटनाएं बुरी ही हो रही हैं, देखने में लोगों को भी देखने में लगता है कि इनके साथ कितना बुरा हो गया, लेकिन हर एक बात के दो पहलू होते हैं। अगर उसमें बुरा होता है तो उसमें कुछ हमारा भला भी होता है, इसीलिए बाबा कहता है कि उसमें हमारा कल्याण है, कोई ना कोई भला है जो भी हुआ है। तो जैसे एक घटना मैं सुनाती हूँ कि एक बहन थी, बीके बहन, ज्ञान में चल रहे थे और उनके पति कुछ समय से बीमार थे। तो वो जो उनका फर्ज था, अपने फर्ज अनुसार वो पूरी तरह से अपने पति की सेवा कर रही थी, लेकिन पति ने शरीर छोड़ दिया। बच्चे थे, वो नौकरी के कारण बाहर थे, तो पति पत्नी ही रहते थे, तो पति ने शरीर छोड़ दिया। अब नेचुरली वो अकेली हो गई, तो ऐसे तो बुरा ही हुआ ना, पति ने शरीर छोड़ दिया। लेकिन पति शरीर छोड़ने के बाद फिर उसने निश्चय किया कि मैं अपने बेटों के पास जाकर नहीं रहूंगी, अब मैं निर्बंधन हो गई हूँ। पति थे तब तक, मेरा जो फर्ज था वो मैंने निभाया, अब मैं निर्बंधन हो गई हूँ, तो अब मैं अपना पूरा समय बाबा की सेवा में ही लगाऊंगी। और उसने बहन को कहा, तो उनका सेंटर जो था वो थोड़ा दूर पड़ता था, तो फिर बहन ने बोला, वो पढ़ी लिखी थी, तो कहा कि तुम खुद अपने यहाँ गीता पाठशाला खोलो। तो उसने अपने घर को ही गीता पाठशाला बना दिया और खुद फुल टाइम जैसे बाबा की सेवा में लग गई। तो देखने में बुरा हुआ ना, लेकिन उसमें भाग्य क्या समाया हुआ था, बाबा ने उसको पूरी तरह से अपनी सेवा का भाग्य दे दिया। तो उसमें हम जो भी देखते हैं घटना, उसमें कोई ना कोई कल्याण होता है। इसीलिए बाबा कहता है, तूफानों को तोहफा समझो, तूफान को तूफान नहीं समझो। क्या समझो? ये हमें ऊंचा उठाने वाले हैं। आज देखो, विघ्न आते हैं तभी हमारी लगन बढ़ती है ना। भक्ति में भी क्या कहते हैं, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो फिर दुख में ही भगवान याद आता है ना, सुख में याद आता है? आता तो है, हम तो बाबा को याद करते हैं लेकिन कम। जब विघ्न होते हैं हमारे आगे, कोई समस्याएं होती हैं, कोई ऐसी बातें होती हैं, तो बाबा की याद नेचुरल ही हमारी निरंतर हो जाती है। होती नहीं होती? किसको अनुभव है कि विघ्न आते ही हमारा लगन बढ़ जाती है? देखो कितने हाथ उठा रहे हैं। तो फिर विघ्न हमारे लिए कल्याणकारी हुआ नहीं हुआ? क्योंकि जितना हम बाबा को याद करेंगे उतने हमारे विकर्म विनाश होंगे, उतना जल्दी हम आत्मा कर्मातीत बनेंगे, पावन बनेंगे, संपूर्ण बनेंगे, क्योंकि बाबा की याद से ही हम ये बनने वाले हैं। तो विघ्न आते हैं हमारी लगन को अग्नि देने के लिए। जैसे कोई भी चीज को पकाना है जल्दी, तो उसकी अग्नि जो है वो तेज की जाती है। तो यहाँ भी ये विघ्न जो है वो उस हमारी याद की अग्नि को, योग अग्नि को वो तीव्र करते हैं और हमें अनुभवी बनाते हैं। कोई भी विघ्न आता है, चलो एक बार हम कोई हलचल में आ जाएंगे थोड़ा, लेकिन दोबारा वही बात आएगी तो हमने तो इसको पार किया है ना, तो हम अनुभवी बन गए, तो हम अचल अडोल रहेंगे। जैसे बाबा कहता है, नथिंग न्यू का पाठ याद रखो, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है ड्रामा में, ये रिपीट हो रहा है, हर 5000 वर्ष में हूबहू होता है। तो अगर ये बात आज मेरे सामने आई है तो 5000 साल पहले भी आई थी, मैंने उसको पार किया था, मैं विजयी बनी थी, और 5000 साल के बाद भी फिर ये मेरे सामने आएगी। तो जब पहले हम विजयी बने थे तो अब भी मैं कौन हूँ? विजयी हूँ मैं, कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। मुझे ये अपना स्वमान स्मृति में लाना है। तो फिर कितनी भी बड़ी बात है हम उसे सहज पार कर लेते हैं, क्योंकि मैंने इसे कई बार पार किया है, हर कल्प में पार किया। जैसे कोई भी काम हम कई बार कर लेते हैं, है ना, कोई व्यक्ति कोई काम पहली बार करता है तो उसे मुश्किल लगता है, लेकिन वही काम मैंने चार बार कर लिया तो अब पांचवी बार हम कैसे करेंगे? उसको कॉन्फिडेंस से करेंगे, है ना, बिल्कुल भी उसमें हमें एकदम जैसे निश्चिंत स्थिति रहेगी, जरा भी डर नहीं लगेगा। तो ऐसे ही वो विघ्न मैंने पार किया हुआ है ये स्मृति में आते ही, हाँ ये तो कोई नई बात नहीं है। तो विघ्न हमें अनुभवी बनाते हैं। और फिर स्वमान का अभ्यास, जैसे बाबा ने जो हमें स्वमान दिए हैं, जैसे बाबा ने कहा आप विघ्न विनाशक हो, हाँ गणेश जी की पूजा क्यों होती है? वो किसका यादगार है? किसका यादगार है? हमारा ही यादगार है, कहेंगे विशेष पांडवों का, लेकिन हम सब बाबा के बच्चे विघ्न विनाशक हैं। तो जो भी विघ्न आते हैं हमारे जीवन में, चाहे वो तन के हैं, मन के हैं, धन के हैं, संबंधों के हैं, प्रकृति के हैं, इविल सोल्स के हैं, आजकल ये भी क्योंकि अकाले मृत्यु बहुत होती है तो इनका भी प्रभाव होता है, हाँ, या कोई तंत्र मंत्र की बातें हैं दुनिया में आजकल बहुत, कोई भी विघ्न आते हैं मानो, लेकिन इन विघ्नों को हम ऊंची स्थिति में रहकर सहज पार कर सकते हैं। ऊंची स्थिति का मतलब क्या है? जब हम स्वमान का अभ्यास करते हैं, मैं विघ्न विनाशक हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं विजयी आत्मा हूँ, जैसे कहा, और कौन मेरे साथ है? स्वयं सर्व समर सर्वशक्तिमान शिव बाबा मेरे साथ हैं। तो हमारी स्थिति ऊंची हो जाती है, नहीं, हमारा मनोबल बढ़ जाता है, बाबा की शक्तियां हमारे साथ जुड़ जाती हैं। तो हम कहते हैं कि जैसे एरोप्लेन है आसमान में उड़ रहा है, तो नीचे पहाड़ है, नदी है या ट्रैफिक है, उसको क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है, कितने भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हों लेकिन एरोप्लेन की ऊंचाई कितनी है? उससे भी ऊंची है। तो हमारे मन की स्थिति भी जब इतनी ऊंची होती है तो ये जो विघ्न है हमें छोटे छोटे लगते हैं ना। ऊपर से एरोप्लेन से देखो तो नीचे वाली चीजें कैसी लगती हैं? खिलौने जैसी लगती हैं, छोटी छोटी लगती हैं। तो ये विघ्न भी हमारे लिए क्या हो जाते हैं? छोटे हो जाते हैं, यानी उनको पार करना हमें मुश्किल नहीं लगता है। या बाबा कहता है कि परिस्थिति भी खेल लगती है, परिस्थिति परिस्थिति नहीं लगती, लेकिन जैसे खेल खेलने में मजा आता है, मौज का अनुभव होता है ना, कितना भी कठिन खेल हो लेकिन खेल में क्या होता है? मजा होता है ना। तो ऐसे ही विघ्न हमें मनोरंजन लगे, हो सकता है इतना परिवर्तन, क्या कहेंगे? हाँ, या विघ्न आते ही हम क्यों क्या में चले जाते हैं, अरे ये क्या हो गया, ये मेरे साथ क्यों हो गया, क्या मेरा ये भाग्य ऐसे लिखा है, मेरे ही बंधन भगवान ने ऐसे इतने बना दिए। अब ये हर कल्प होगा, ये इस कल्प नहीं है ना, ड्रामा को भी हम नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, हाँ क्या ये मेरे साथ हर कल्प होता रहेगा, ऐसे ही मैं, हाँ मेरा भाग्य होगा, तो क्या सोचना है? क्यों क्या में जाना है? व्यर्थ संकल्पों में जाना है, और व्यर्थ संकल्पों से हम अपने लिए फिर खुद के लिए और ही विघ्न पैदा करते हैं। जितना हम विस्तार करेंगे उसका, व्यर्थ संकल्पों में जाना माना समस्या होती है छोटी सी और हम उसको क्या बना लेते हैं? पहाड़, राई को पहाड़, और कोई होता है पहाड़ को क्या बना लेता है? राई, और राई भी नहीं क्या बना देते हैं बाबा कहते हैं? रुई। तो क्या करना है, क्या बनाना है? राई को पहाड़ बनाना है या पहाड़ को रुई बनाना है? तो वो बल, हाँ, वो हमें मिलता है योग से, जितना हम बाबा की स्मृति में, बाबा की याद में रहते हैं, जितना हम ज्ञान के चिंतन में रहते हैं, जितना हम श्रेष्ठ स्मृति में रहते हैं, उतना हम बड़ी बातों को भी फुल स्टॉप लगा सकते हैं, है ना। वो हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर आ जाती है, है ना। ज्ञान में आने का मतलब, बाबा के बनने का मतलब ये नहीं कि विघ्न हमारे सामने नहीं आएंगे या समस्या हमारे सामने नहीं आएगी, है ना। ये तो बाबा कहता है। और ही जैसे कि मैंने कहा, बाबा को, माया को हमने ललकारा है, तो जैसे वो खेलते हैं ना, जो गेम खेलते हैं, जो कुश्ती खेलते हैं पहलवान, तो वो एक दूसरे से ज्यादा ज्यादा बल वाला जो है दांव लगाते हैं कि मेरा इससे भी पावरफुल हो, ताकि मैं इसको गिरा दूं। तो फिर माया का भी यही होता है कि ये आगे बढ़ रहे हैं तो माया भी उतना ही रूप में। और बाबा कहता है, जितना आप महारथी बनेंगे, जितना आप आगे बढ़ेंगे, उतना माया भी उसी रूप में, बड़े रूप में आपके सामने आएगी। लेकिन अगर हमारी स्थिति ऊंची है तो वो विघ्न हमें विघ्न लगेगा ही नहीं। और उसका यादगार क्या है, उसका भी यादगार है हमारे शास्त्रों में, विष्णु जी शेष शैया पर लेटे हुए हैं। कैसे लेटे हुए हैं? है शेष शैया, मतलब वो सांप के दिखाते ना, सांपों की शैया है, और उनके ऊपर वो पांचों फन जो हैं शेषनाग के, वो उनके उनको छत्र छाया कर रहे हैं। तो वही उनके लिए शैया बन गई, यानी माया उनकी दासी बन गई। वो पांच विकारों का प्रतीक है ना, जो पांच फन है, और उसमें भी वो बहुत हर्षित मुद्रा में लेटे हुए हैं, जैसे कि कोई चिंतन में है ना। चिंतन में माना, जैसे हम कहेंगे कि बहुत कोई खुशी का चिंतन उनके मन में है, ऐसा उनका वो स्वरूप दिखाते हैं। तो ये किसकी यादगार है, किसकी यादगार है? तो हमारी जब स्थिति ऐसी है कि माया कितना भी विकराल रूप में आ जाए हमारे सामने, लेकिन फिर भी हमारा मन सदा अचल अचल अडोल स्थिर है, मन की स्थिति खुशनुमा है, हमारी उस स्थिति का ये यादगार बना हुआ है। तो ऐसे ही मानो प्रकृति के कोई विघ्न आते हैं, प्रकृति की आपदाएं आ जाती हैं, और उसके प्रभाव में हम होते हैं, होता है कहीं अचानक तूफान आते हैं, या अचानक बाढ़ आ जाती है, कहीं आग लग जाती है, कोई कोई ऐसी घटनाएं, अनहोनी जिसे हम कहते हैं, है ना। इतना कॉमन नहीं है वो, तो जब विनाश का समय होगा तब ये ज्यादा होगा। लेकिन बाबा ने क्या कहा, हम प्रकृति जीत आत्माएं हैं, और हम प्रकृति को भी अपना मनसा सहयोग देते हैं, क्योंकि प्रकृति को भी हम पावन बनाने वाले हैं, प्रकृति को भी हम सतो प्रधान बनाने वाले हैं। तो अगर प्रकृति की हमने सेवा की है, तो कभी भी हम प्राकृतिक आपदा में शरीर नहीं छोड़ेंगे। और कोई ऐसी आपदा आती है तो उसमें अगर हम बाबा की याद में हैं, ऐसे बाबा के बहुत से बच्चों के अनुभव हैं कि जब उनके सामने ये स्थिति पैदा हुई और वो बाबा की याद में हैं, तो वो जो आपदा है वो उनके नजदीक तक आई होगी, लेकिन उनको बहुत कम या कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, या हुआ तो बहुत कम नुकसान हुआ। कई जगह पर कई बार भूकंप आए, वहां पर अपने सेंटर होते हैं बाबा के। अभी जैसे यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, वहां भी बाबा के सेंटर हैं, कितना नुकसान हुआ है वहां पर, लेकिन बाबा के बच्चों का ऐसा कोई नुकसान नहीं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ना कि वो दिखाते हैं भट्टी में बिल्ली के पुंगरे सेफ रहे, तो वो भी किसकी यादगार है कि चारों तरफ ऐसी विनाश की अग्नि होगी, लेकिन उसमें भी जो बाबा के बच्चे हैं, जब हम एक बल एक भरोसे के आधार पर, यानी एक बाप दूसरा न कोई, जब ये धारणा हमारी है तो कोई विघ्न छू भी नहीं सकता। बाबा कहता है कि बाबा आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। लेकिन हमारी स्थिति वो होनी चाहिए। अगर हम विघ्न के प्रभाव में आ गए बाबा की याद की बजाय, तो हो सकता है कि उसका कोई नुकसान हमारे ऊपर हो। और ऐसे ही जो कहा कि इविल सोल्स का प्रभाव वो किसके ऊपर होता है, जो कमजोर आत्माएं होती हैं, क्योंकि इविल सोल्स को उनको, क्योंकि फ्री सोल्स हैं और उनको शरीर चाहिए होता है, तो जो भी पावरफुल सोल है और खासकर अगर पवित्रता का बल है आत्मा के अंदर, तो वो कभी भी नुकसान पहुंचा नहीं सकती। यहां तक कि जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं जिन्हें हम तंत्र मंत्र कहते हैं, वो भी कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ऐसे ही एक मिसाल मतलब मेरे जीवन का अनुभव का है, जब मैं ज्ञान में आई तो हमारे सेंटर में एक युगल आते थे, तो पवित्र प्रवृत्ति में रहते हैं जो भी बाबा के बच्चे युगल हैं, तो वो भी पवित्रता की धारणा का पूरा पालन करते थे। और एक गांव में वो सेवा के लिए गए, तो उन्होंने अपना अनुभव सुनाया था कि वहां पर जैसे होता है ना कि वो आह्वान करते हैं, कोई आत्मा आती है और फिर वो सबसे बातचीत करती है, और किसी को कोई हल चाहिए तो वो भी बताती है क्या होगा, होगा कि नहीं होगा जो भी। तो फिर उनको क्यूरियोसिटी हुई कि हम भी देखते हैं, है ना, ऐसा होता है इस गांव में। और ये कोई विशेष दिन होता था जिस दिन वो देवी की सभा लगाते थे, तो वो बैठे वहां, लेकिन जिसमें वो सोल आती थी वो नहीं आई। फिर उन्होंने बहुत कोशिश की कि जिस तरह से वो आह्वान करते थे वो आह्वान किया, फिर भी वो सोल नहीं आई। फिर जब बहुत लेट हो रहा था तो इन्होंने कहा कि ठीक है अभी हम जाते हैं, वो तो आत्मा तो जो देखना चाहते थे वो आई नहीं रही है। वो चले गए वहां से, और जैसे ही वो निकले वहां से वो सोल आ गई। तो उन्होंने पूछा, इतनी देर से हम कोशिश कर रहे हैं आप नहीं आई। तो उसने कहा कि यहाँ पर कोई पवित्र आत्माएं बैठी थी, वो उनकी शक्ति इतनी थी कि मैं नहीं आ सकती थी, वो गई तो। तो ये प्यूरिटी की पावर है ना, अगर वो पावर हमारे अंदर है तो कोई भी ऐसी आत्माएं हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, या कोई भी ऐसी नेगेटिव एनर्जीज जो है वो हमारे को छू तक भी नहीं सकती, अगर बाबा सर्वशक्तिमान बाबा जो है उनका साथ हमारा है। तो इसीलिए हम देखते थे कि जब कोई भी विघ्न होते थे, दादी जी काफी समय हो गया बाबा के इस यज्ञ में रहते हुए, तो कोई भी ऐसी बात होती थी तो दादी हमेशा रात की भट्टी करवाते थे कि रात को भट्टी करो बैठ करके, और वो सॉल्यूशन हो जाता था रात भर, क्योंकि हमें अपनी लगन को बढ़ाना है। कहीं ना कहीं हमारी लगन या याद कम है, तब वो विघ्न हमें छू पा रहा है। एक गुलजार दादी जी उदाहरण देते थे, जो पुराने हैं उन्होंने सुना भी होगा, कि हमारा दिल्ली में एक मेला लगा, इंदिरा गांधी जी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी और मेला लगना था, गवर्नमेंट का ही मैदान था जो लिया गया था। लेकिन हुआ ये कि उसी पीरियड में कोई रशिया का प्रोग्राम आ गया, अब मेला तो सारा सेट कर दिया था, बस शुरू ही होना बाकी था। तो इंदिरा गांधी जी ने डिसाइड किया कि ब्रह्मा कुमारियों को ये जो दिया है वो हटा दो, और जो हमारा रशिया का प्रोग्राम है वो वहां होगा। तो ये आ गई सूचना, तो अब सारा मेला लग चुका है, उसे कैसे हटाया जाएगा। तो फिर दादियों ने कहा कि हम रात भर बैठकर बाबा को याद करेंगे। तो सारा भट्टी चली, भाई बहने जो भी सेवा में आए हुए थे सबने योग लगाया, और सुबह उनके गवर्नमेंट के ऑफिसर्स देखने के लिए आए। तो हमारे मेले में क्या होता है, देवियां, देवियों को भी लगाते हैं ना, देवियों की झांकी होती है। आजकल तो चैतन्य देवियों की झांकी लगाते हैं, लेकिन वहां उसमें दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी जी ऐसे बिठाया हुआ था उनको। तो जब उन्होंने देखा, ऐसे होता है नवरात्रे में भी देवियों की स्थापना होती है, तो उन्होंने देखा अरे इन्होंने तो देवियों की स्थापना कर दी है, और अगर ये देवियों को हटाएंगे तो कुछ अनर्थ हो सकता है। तो उन्होंने जाकर इंदिरा गांधी को सुनाया, फिर इंदिरा गांधी ने कहा ठीक है उनको रहने दो। हम अपना प्रोग्राम दूसरी जगह कर लेंगे और जो मेला था बाबा का जैसे होना था फिर वैसे ही हुआ। तो योग बल की पावर, हमारी जो शक्ति है वो ज्ञान बल, योग बल और धारणा का बल, बाबा ने जो हमें धारणाएं दी और उसके आधार पर फिर हम जो सेवा करते हैं उसमें फिर हमें सफलता में कोई विघ्न नहीं आते। सफलता में, सेवा में तभी विघ्न आते हैं जब मैंपन होता है, देह अभिमान होता है, जो बाबा ने अभी पीछे मुरली में कहा, महीन मैंपन में आ जाते हैं, ये मेरी विशेषता है, मुझे पूछा नहीं गया, मुझे मान नहीं दिया गया, या जो भी हम स्वभाव संस्कार में आ जाते हैं। तो ये सब जब ये देह अभिमान आता है तब निर्विघ्न सेवा नहीं हो पाती। तो सेवा भी निर्विघ्न हो वो तब होगी जब निमित्त निर्माण और निर्मल होंगे। जैसे बाबा ने अपने आप को सेवाधारी समझा, सदा ही बाबा ने क्या कहा, मैं बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूं। तो सेवाधारी समझ करके सेवा करना, तो वो निर्माणता हमारे अंदर रहेगी। और फिर नाम मान शान की बात जहां आती है, बाबा कहता है उसमें पहले आप करो, मुझे देना है, दाता बनना। हमारे संबंधों में जो विघ्न आते हैं उसका कारण है हम अपेक्षाएं रखते हैं, इसको ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे परिवर्तन होना है, मुझे देना है, मुझे करना है। तो जितना हम पहले मैं करेंगे, किन्हीं बातों में पहले मैं, यानी पुरुषार्थ में पहले मैं, परिवर्तन करने में पहले मैं, और जहां दूसरों से लेने की बात आती है वहां पर पहले आप, तो नाम मान शान देने में पहले आप, ऐसे हम करें तो फिर हमें को ये विघ्न जो संबंधों में भी हमें डिस्टर्ब करते हैं, बाबा से हमारा योग टूट जाता है। दो ही तरह का होता है कि या तो लगाव झुकाव में चले जाते हैं या प्रभाव में चले जाते हैं, या फिर ईर्ष्या द्वेष घृणा में आ जाते हैं। ईर्ष्या में आए, खुद आए या दूसरा हमारे से ईर्ष्या करता है, दोनों ही बातें होती हैं। हमको किसी से ईर्ष्या हो गई, कोई आगे बढ़ रहा है तो फिर सहन नहीं होगा, तो उसके बारे में उल्टी पुल्टी बातें करना शुरू कर देंगे, अरे आप इसको जानते नहीं, ये ऐसे और वैसे, और ये कल क्या थे, अरे आज क्या, इसको तो है ना, ये इसकी पार्शलिटी है, ये इसको वो करते हैं, मतलब इसको आगे बढ़ाते हैं, हम भी तो कर सकते हैं, हमको तो, ये ईर्ष्या वाले जो हैं वो फिर इस तरह से बातें करके विघ्न पैदा करते हैं, मतलब माहौल को खराब करते हैं, आपके बारे में ऐसी बातें करेंगे। और अगर हमें किसी से ईर्ष्या होती है तो हमें क्या समझना है, बाबा कहते रीस नहीं रेस करनी है, तो उस बात की रीस नहीं, क्योंकि हर एक आत्मा का पार्ट और भागी अपना अपना है, लेकिन गुणों की रेस करो, भले उसमें क्या गुण है जिससे वो आत्मा आगे बढ़ रही है, मैं भी वो गुण अपने अंदर लेकर आऊं, मैं भी अपनी जो योग्यता है पुरुषार्थ की उसको बढ़ाऊं, तो हम भी अपने आप आगे बढ़ेंगे, है ना। और कोई हमारी इंसल्ट वगैरह कर देता है, कोई अच्छा व्यवहार नहीं करता, ये सब भी कॉमन बातें हैं जो हमारे संबंधों में होती रहती हैं, तो फिर वो भी बाबा ने हमें नॉलेज दी है कि हम ब्राह्मण आत्माएं 84 जन्मों से साथ में आते रहे हैं, ये परिवार अभी आकर इकट्ठा हुआ है, तो हिसाब किताब भी हमारे आपस में एक दो के साथ हैं, वो भी सारे अभी चुकतू होने हैं, सब खत्म होने हैं, तो अच्छा है ना, मैंने कभी किया होगा इनके साथ ऐसा, जब भी ये आत्मा आज मेरे साथ ऐसा कर रही है तो मुझे उसको चुकतू करना है, यानी शुभ भावना शुभ कामना ही रखनी है उस आत्मा के प्रति, वही जो वो मेरे साथ कर रही है नहीं करना है, उसने मुझे उल्टा व्यवहार किया तो मैं भी उसके साथ उल्टा ही व्यवहार करूं नहीं, लेकिन मुझे फिर भी उनके प्रति जैसे बाबा कहता है माफ कर देना है, बाबा क्षमा का सागर है, तो हम बाबा के बच्चे कौन है, मास्टर क्षमा के सागर, कोई ऐसी भी गलती करते हैं तो हम उनको माफ कर दें, क्षमा कर दें, अपने दिल को साफ रखें किसी भी आत्मा के प्रति उनकी बातों को अपने मन पर नहीं रखें, है ना। उनको जैसे कहते हैं भूल जाओ, उस बात को भूल जाओ, ऐसा कुछ हुआ भी तो वो रिस्पेक्ट आत्मा के प्रति हमारा कम ना हो। तो जो संबंधों में ये विघ्न आते हैं, जो बाबा से योग तोड़ देते हैं, हमारा हमें कमजोर बना देते हैं, हमें पुरुषार्थ में पीछे कर देते हैं, है ना, ये भी हम समाप्त करके सदा ही एक रस पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाएंगे। तो विघ्न तो आने ही हैं, लेकिन हमें निर्विघ्न और माया जीत, विघ्न जीत, विघ्न विनाशक बनना है। जो बाबा ने हमें ये टाइटल दिया है उसे स्मृति में रखते हुए सदा विघ्नों पर विजय पाते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। ओम शांति।